अध्याय सात शैव धर्म। शैव धर्म शिवी रुद्र शंकर आदि को आराध्य देव स्वीकार करता है। इस धर्म की आराधना पद्धति में शिव का मानव स्वरूप तथा शिव को दर्शाया गया है। शिव की पूजा प्रारंभिक स्वरूप नवपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में पाशुपत विद्यमान थे। मोहनजोदड़ो की पाशुपत मुद्रा में शिव का अंगन प्राप्त होता है। हड़प्पा से प्राप्त नित्य मुद्रा में पत्थर की मूर्ति शिव का नटराज स्वरूप मानी जा सकती है। आर्यष्टीन नामक विद्वान ने सिंधु घाटी की सभ्यता के विभिन्न स्थानों में शिव के पूजा के साक्ष्य प्राप्त किए। हालांकि शिव से संबंधित न होकर प्रजन के अधिक निकट है। जॉन मार्शल का यह कथन सर्वथा उचित है कि इस काल में शिव प्रमुखता से विद्यमान थे। ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन हुआ है। वैदिक मंत्रों में इनका स्थान उच्च नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में रुद्र पहाड़ों, वृक्षों, नदियों तथा पृथ्वी से संबंधित देवता है तथा सुभिक्षुत एवं संहारक दोनों गुण रखते हैं। यहाँ इनका निवास मुजवत पर्वत माना गया है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र एक महान देव के रूप में तथा प्रजापति एवं विष्णु के साथ त्रिदेव के रूप में स्थापित हुए। यजुर्वेद में प्रथम बार इन्हें वनस्पतियों, मानव तथा पशुओं का महान देवता स्वीकारा गया। अथर्ववेद में इन्हें विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। यहाँ इन्हें सर्व पशुपति, रुद्र, उग्र, भाव, महादेव आदि नामों से जाना गया तथा रुद्र की सोम के साथ प्रार्थना पाप मुक्ति हेतु की जाती थी। अथर्ववेद में महादेव को एक व्रत के नाम से भी जाना गया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त, द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त तथा 7वें मंडल के 46वें सूक्त में रुद्र का वर्णन है। यहाँ रुद्र क्रूर, अत्यंत सुंदर, यौवन युक्त, उपासकों के प्रति उपकारी, विरोधियों के विनाशक तथा मरुतों के पिता के रूप में वर्णित है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। रुद्र के लिए वर्णित त्र्यंबक शब्द का अर्थ रुद्र के तीन नेत्रों से लगाया जाता है। ऋग्वेद में रुद्र के विभिन्न नाम पाए गए हैं, जैसे कर्पादि, दिव्यवराह, मेघपति, महाभीषज इत्यादि। ऐत्रेय ब्राह्मण में रुद्र को समस्त देवों के विध्वंसक शक्ति का संयुक्त रूप माना गया, जिसे उन्होंने प्रजापति को दंडित करने के लिए धारण किया। प्रजापति को यह दंड अपनी पुत्री के प्रति आकर्षण के कारण मिला था। कौशिकी में ब्राह्मण के में रुद्र के आठ नामों रुद्र, सर्व, उग्र, आशनी, महादेव, ईशान, भाव तथा पाशुपत का उल्लेख हुआ है, जिनमें रुद्र, सर्व, उग्र तथा आशनी उनके विध्वंसक स्वरूप हैं। महादेव, ईशान, भाव तथा पाशुपत शिव के शुभेच्छु स्वरूप हैं। कित के अनुसार महादेव एवं ईशान शिव के विशेष संप्रदाय से संबंधित नाम हो सकते हैं। शिव भक्ति का प्रथम स्पष्ट वर्णन श्वेता सोत्र उपनिषद में है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र हानि पहुंचाने वाले देव हैं तथा अपने पूजकों का भी अनिष्ट करते हैं। शत्रुद्री मंत्र की रचना उनके क्रोध को संत करने के लिए हुई। यजुर्वेद के शत्रुद्री मंत्र में 100 रुद्रों का वर्णन है, जिसमें सुभेक्षु एवं विध्वंसक दोनों माने जाते हैं। श्वेता सत्वर उपनिषद में शिव के साथ उन्हें महेश्वर भी कहा गया है तथा उन्हें ब्रह्म के समकक्ष माना गया है। इसी उपनिषद ने भक्ति परंपरा को स्थापित किया। गृह सूत्र में रुद्र के लिए सुलगव नामक यज्ञ सवर्णित था, जिसमें बैल को बलि दी जाती थी। महाकाव्य में रुद्र का शुभेच्छु स्वरूप अधिक विकसित हुआ। रामायण में शिव को नीलकंठ, त्र्यंबक, पाशुपति, शिव, शंकर तथा आशुतोष आदि नामों से वर्णित किया गया है। उनके विध्वंसक स्वरूप का विवरण लगभग नगण्य है। रामायण में उनको योग, शक्ति आदि से भी संबंधित किया गया है तथा उनकी पत्नी उमा आदर की पात्र है। रामायण में शिव का समुद्र मंथन के समय विष्पान गंगा अवतरण पार्वती से उनका विवाह, स्कंद के जन्म आदि का भी विवरण है। महाभारत में अर्जुन ने शिव को त्रिदेवो की शक्ति, दक्ष के यज्ञ को भंग करने वाला, त्रिनेत्र धारण करने वाला माना है। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र के लिए याचना की थी, जिसे शिव ने प्रदान किया था। महाभारत में शिव की अनेक उपाधियों का वर्णन हुआ है। शिव को त्र्यंबक, व्योमकेश, कांति वाले केश धारण करने वाले, विषकवि, हर आदि कहा गया है। महाभारत में शिव अपने भक्तों को मुक्त रूप से वरदान देते हुए वर्णित हैं। काशीराज को भीष्मवध हेतु द्रुपद का पुत्र होने का वरदान शिव का ही था। शौप्तिक पर्व में वर्णन है कि अश्वत्थामा ने शंकर की आराधना कर दिव्य खड़क प्राप्त की। इसी खड़क से अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न तथा पांडव पुत्र का वध किया। शक्ति अस्त्र जिसे त्वाष्ट से निर्मित किया था, शिव के निर्देशन के द्वारा ही निर्मित था। युधिष्ठिर ने इसी से शल्य का वध किया था। परशुराम ने गदमादन पर्वत पर तपस्या कर शिव से अस्त्र प्राप्त किए थे। कृष्ण द्वापायन ने शिव भक्ति के द्वारा शुक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। महाभारत में शिव का तीन नगरियों को जलाकर नष्ट करना, दक्ष का यज्ञ भंग करना आदि भी वर्णित है। महाभारत में दक्ष के यज्ञ भंग में कई वर्णन मिलते हैं। पार्वती को सुनाई एक कथा के अनुसार दक्ष के यज्ञ में देवताओं को कोई आहुति नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए यज्ञ को नष्ट कर दिया गया। एक दूसरे विवरण के अनुसार शिव ने वीरभद्र तथा भद्रकाली नामक गढ़ों का निर्माण दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए किया था। महाभारत में शिव के द्वारा अंधक के वध का वर्णन है। शिव के द्वारा गंगा अवतरण में भगीरथी को सहायता देने का भी वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ शिव केवल मानव स्वरूप में न पूजित होकर लिंग रूप में भी विद्यमान है। लिंग के एक स्थान पर निश्चित होने के कारण शिव को शांतनु कहा गया। महाकाव्यों में शिव के पुत्र के रूप में मरुतों के स्थान पर स्कंद एवं गणेश का विवरण प्राप्त होता है। पुराणों में शिव महिमा को वृहद स्वरूप प्रदान किया गया है। मत्स्यलिंग एवं वायु पुराण में उत्तर वैदिक रुद्र शिव को सर्वोत्तम देव माना गया है। उन्हें शिव शंकर आदि नामों से संबंधित किया गया है तथा उमा पार्वती का पति एवं गणेश और कार्तिकेय का पिता कहा गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में रुद्र के भाव सर्व रुद्र मिग्र आदि नामों का उल्लेख मिलता है। शिव के मृद नाम का उल्लेख चतुर्दी में भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय तथा चुल्लवग में शिव देवता के रूप में वर्णित है। सिकंदर के इतिहासकारों ने शिवियों जनजातियों को शिव पूजक माना है। मेगस्थनीज ने शिव को डायनोसियस कहा है, उन्हें पर्वत का देवता माना है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव भागवतों का वर्णन किया है तथा रुद्र को बलि का देवता एवं औषधि प्रदान करने वाला माना है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर भी शिवोपासना का अंकन है। यहाँ शिव के लिंग नदी नंदी तथा मानव स्वरूप का अंकन है। प्रारंभिक उज्जैन सिक्कों पर त्रिमुखी शिव त्रिशूल एवं कमंडल के साथ वर्णित है। शिव रक्षित की एक मुद्रा पर शिव का अंकन त्रिशूल के साथ है। ऐसा ही अंकन शक शासक मेस तथा पार्थियन शासक गोडफनीज के सिक्कों पर भी है। विम कैडफिसिस कनिष्क हुविस तथा वासुदेव के सिक्कों पर शिव नंदिन त्रिशूल एवं पार्वती की आकृति पाई गई है। गांधार स्थित पुष्प कलावती के प्रधान देवता शिव को माना जाता है। शिव की पूजा शिव के मानव स्वरूप से भी प्राचीन है। इसके अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण कालीन क्षेत्रों में मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में यह एक प्रसिद्ध आराधना थी। लिंग पूजा का महत्व पुराणों से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध लिंगों में हिमालय क्षेत्र का केदारेश्वर लिंग, देवगढ़ का वैद्यनाथ लिंग, वाराणसी का विश्वेश्वर लिंग, उज्जैन स्थित महाकाल एवं अमरेश्वर लिंग, नर्मदा स्थित सोमनाथ लिंग, नासिक का त्र्यंबक लिंग, महाराष्ट्र के भीम नदी पर स्थित भीमेश्वर लिंग, गोकर्ण का महाबलेश्वर लिंग, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन लिंग तथा रामेश्वर का रामलिंग अत्यंत प्रसिद्ध है। गोमतेश्वर लिंग तथा नागेश के लिंगों को भौगोलिक स्थिति अज्ञात है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लिंग पूजा एक सम्मानित स्थान था। ऋग्वेद में शिव पूजकों की निंदा की गई है, परंतु उत्तर वैदिक साहित्य में शिव की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य एवं पुराणों में शिव आराधना एवं उनकी स्थापना का वर्णन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैदिक राज आदिवोदास ने वाराणसी में अमित मुक्तेश्वर लिंग की स्थापना की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने, नलेश्वर शिवलिंग की स्थापना राजा नल ने तथा रामलिंग की स्थापना राम ने की। महाभारत में लिंग पति का भी वर्णन प्राप्त होता है। कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा ने शिव को सृष्टि निर्माण के लिए मना किया। तत्पश्चात शंकर ने अपने को जल में छुपा लिया। जब बहुत दिनों तक कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो ब्रह्मा ने एक प्रजापति को उत्पन्न किया, जिससे बहुत सारे लोगों का सृजन हुआ। शंकर जब जल से बाहर आए तो उन्होंने प्रजापति के सृजन को देखा। कारण ज्ञात होने पर अपने को पृथ्वी पर स्थापित किया तथा पूजा का प्रारंभ हुआ। शैव संप्रदाय श्वेता सवितर उपनिषद में शिव एवं रुद्र का एकीकरण हुआ। शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र एक बलवान योद्धा के रूप में वर्णित हैं, जो पिनाक नामक धनुष को धारण करते हैं। उनके व्रज का नाम शुक है। शतपथ एवं कौशतकी ब्राह्मण के अनुसार वे उषा के पुत्र हैं तथा प्रजापति ने उनके 8 नाम रखे हैं। वाजसनेयी संहिता में इन्हें शत्रुदी, शिवातनु तथा पर्वत पर शयन करने के कारण गिरीश, गृत तथा पाशुपति भी कहा गया है। अथर्वेद के अनुसार महादेव विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। वह भाव के रूप में अर्थवर्ती, सर्व के रूप में दक्षिण, पाशुपति के रूप में पश्चिम, रुद्र के रूप में भूतल तथा ईशान के रूप में अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। सूत्रकाल में रुद्रोपासना में कर्मकांडों को स्थान मिला तथा पशुबलि प्रारंभ हुई। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शिव उपासना की पुष्टि होती है। पाणिनि स्वयं शिव भक्त थे। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शिव भागवत का उल्लेख किया। शिव भागवत से भी शैव धर्म में संप्रदायों का प्रारंभ होता है। मौर्य काल में शिव स्कंद की मूर्तियों के निर्माण का भी उल्लेख है। वामन पुराण में शैवों के 4 मत बताए गए हैं, शैव, पाशुपत, कालदमन, कापालिक संप्रदाय। शैव भागवत शैव भागवतों का प्रथम उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। पाणिनि के अष्टाध्याय की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने आयश शूलिका तथा दंडजीन नामक शब्दों का उल्लेख किया है। अयशूलिक का उल्लेख ऐसे योगियों से है जो धातु का दंड धारण करते थे। दंडजीन का वर्णन महाभाष्य में नहीं है, परंतु उसका संबंध चर्म वस्त्र दंड आदि से संबंधित दिखता है। पतंजलि ने राभस शब्द का प्रयोग भी पाशुपतों के लिए किया है, जिसका अर्थ विभस्त कर्मकांडों में लिप्त होना है। शिबी या शिबोई जनजाति चर्म वस्त्र एवं सिंह के आभूषण धारण करती थी। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत का प्रारंभिक वर्णन महाभारत में है, जहाँ पांच संप्रदाय सांख्य योग, पांचरात्र, वैदिक तथा पाशुपत का वर्णन है। यहाँ पाशुपत का संस्थापक शिव को माना गया है। शिव को ही उमापति, भूतपति, श्रीकंठ तथा ब्रह्मपुत्र कहा गया है। आजी भंडारकर ने इन अनुश्रुतियों के आधार पर श्रीकंठ को पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना है। पाशुपत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक लकुलिश या लकुलिन को माना गया है। वायुपुराण में लकुलिश के जन्म एवं कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। कारवाम महात्यम के अनुसार लकुलिश या शिव का जन्म विश्वराज ब्राह्मण एवं उनकी पत्नी सुदर्शन से बड़ौदा के निकट अवखल नामक स्थान पर उल्कापुरी नामक ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अत्यंत चमत्कारपूर्ण कार्य किए। 7 महीने जीवित रहने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु अवस्था में ही एक कछुए के द्वारा वे जलेश्वर ले जाए गए, जहां उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ। यहां से कार्यारोहण जाकर उन्होंने शैव धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। वायुपुराण में शिव ने यह भविष्यवाणी की थी कि 28वें युग में कृष्ण वासुदेव के रूप में तथा स्वयं शिव लकुलिश के रूप में अवतार ले। इसी काल में शिव ने कायारोहण में शव के अंदर प्रविष्ट होकर लकुलिश का अवतार लिया। अतः लकुलिश का जन्म स्थल कायारोहण माना जा सकता है। लकुलिश ने अपने 4 शिष्यों कौशिक, गर्ग, मित्र और कौरशेय की सहायता से पाशुपत संप्रदाय का प्रचार किया था। लकुलिश ने माहेश्वर के योग का प्रचार था रुद्रलोक को प्रयाण किया। उदयपुर से प्राप्त 971 ईस्वी के एकलिंग जी मंदिर के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि ऋषि भृग के द्वारा पोषित भृगुकच्छ के कायारोहण नामक स्थान पर लकुल धारण किए हुए शिव अवतार लेंगे। इस अभिलेख में कौशिक आदि ऋषियों का भी वर्णन है। 1116 ईस्वी के उदयपुर में पालडी अभिलेख में यह वर्णित है कि जब शिव ने कलयुग में धर्म का नष्ट होते देखा तो भृगुकच्छ के कायारोहण में भूमि पर अवतरित हुए। सोमनाथ से प्राप्त 13वें शताब्दी के सारंगदेव की चित्रा प्रशस्ति के अनुसार शिव गुजरात के लार नामक स्थान से कायारोहण गए तथा लकुलिश के रूप में स्थापित हुए। अपने 4 शिष्यों कौशिक, गर्ग, कौरशेय तथा मित्र के साथ पाशुपत संप्रदाय का प्रचार किया। लकुलिश को शिव का 28वां अवतार माना जाता है, लेकिन राजशेखर एवं हरिभद्र ने शिव के 18 अवतारों का वर्णन किया है, जिसमें लकुलिश प्रथम अवतार है। आर्य भंडारकर ने महाभारत की गणना के आधार पर लकुलिश का काल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना है। डीआर भंडारकर ने चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख के आधार पर लकुलिश की तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया है। अभिलेख में महेश्वर आचार्य उदिताचार्य के द्वारा जो 2 शिवलिंगों के दान का उल्लेख है, यह उनके गुरु भागवत कपिल तथा गुरु के गुरु भागवत उपमति के नाम पर रखे गए हैं। उदिताचार्य को कौशिक में 10वें पश्चात का माना गया है तथा भगवत पराशर से चतुर्थ वंश पर आता है। भंडारकर ने इस कौशिक की पहचान लकुलिश के शिष्य के साथ भी की है। यह अभिलेख 380 ईस्वी का है तथा इस आधार पर लकुलिश की तिथि 2 शताब्दी ईस्वी मानी है। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख जानकारी पाशुपत सूत्र से प्राप्त होती है। कौंडिन्य ने इस पर पंचार्थ भाष्य लिखा था। हरदत्त की गढ़करिका तथा भावार्जुन की रत्नालिका भी इस पर महत्वपूर्ण टीका है। पाशुपत संप्रदाय का यह मानना है कि स्वयं शिव ने लकुलिश के अवतार के रूप में पाशुपत शास्त्र की रचना की थी। लकुलिश ने स्वयं उज्जैनी में कौशिक को यह उद्घाटित किया था। इन सूत्रों में शैव संप्रदाय के कर्मकांडों का वर्णन अधिक है तथा दर्शन नगण्य है। इसमें कार्य का सिद्धांत, माया का सिद्धांत तथा निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं है। सूत्रों में ईश्वर पूजा, बलि प्रथा तथा श्राद्ध प्रथा का निषेध किया गया है। सूत्रों में केवल ब्राह्मण को ही पाशुपत की दीक्षा का अधिकारी माना गया है। शूद्रों एवं स्त्रियों के द्वेष दृष्टि से देखा गया है। पाशुपत सूत्र शैव साधक के लिए कड़े नियमों और नियमों का प्रतिपादन करता है तथा ओम को परम शब्द मानता है। लकुलिश की कृति पंचाध्याय या पंचार्थ विद्या मानी जाती है, इसमें द्वैतवादी मत है। कौंडिन्य ने पाशुपत संप्रदाय को 5 भागों कार्य कारण योग विधि तथा दुखांत में विभाजित किया है। कार्य प्रभाव विद्या काल एवं पशु है। बंधन युक्त आत्मा का निर्माण किया जा सकता है, वह समय से प्रभावित होती है एवं परिवर्तनशील है। उनका जन्म होता है तथा उनका आत्मसात भी ईश्वर से होता है। यह बंधन युक्त आत्मा ईश्वर से निकलती एवं मिलती रहती है, जैसे आसमान से तारे टिमटिमाते रहते हैं। कारण स्वयं ईश्वर या शिव है। कारण या शिव को सृष्टि का सृजनकर्ता एवं विनाशक माना गया है। कारण के 2 स्वरूप हैं। प्रथम वह सकल एवं शारीरिक रूप में है तथा दूसरा वह निश्चल या निर्गुण निराकार है। दोनों ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति से पूर्ण है तथा शिव की इच्छा धर्म से ऊपर है। कौंडिन्य तथा रत्नाटिक ने ईश्वर की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकारा है। पाशुपत का 3रा स्तंभ योग है। योग व्यक्तिगत आत्मा का ईश्वर से संयोग है। पतंजलि के अनुसार योग मानसिक शक्तियों को साधने का माध्यम है, लेकिन पाशुपत योग में शिव की आराधना में आत्मा का ईश्वर से मिलन ही योग है। विधि द्वारा नैतिक नियमों को स्थापित किया जाता है। इसके 2 स्वरूपों प्राथमिक एवं द्वितीयक है। प्राथमिक विधि में वर्त तथा मार्ग सम्मिलित है। इसमें भस्म को शरीर पर मलना, शैव धर्म को नियमों जैसे हंसना, नृत्य करना, हुटकारना आदि का यथार्थ रूप से पालन करना है। मार्ग में कर्थन, स्पंदन, श्रृंगारण, मंदन, अवतित कारण, अवित भाषण आदि सम्मिलित है। दुखांत पाशुपतों का अंतिम चरण है। यह शिव की कृपा से ही संभव है। शिव के अनुग्रह से ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। पाशुपत तथा अन्य प्रारंभिक संप्रदायों का साहित्य आगम कहलाता है। इन्हें 2 पक्ष है, आगम एवं निगम। आगम शिव के द्वारा पार्वती के माध्यम से परम सत्य की व्याख्या तथा निगम पार्वती द्वारा शिव के प्रश्नों का उत्तर है। आगमों की संख्या 28 है तथा यह संस्कृत भाषा में है। आगम साहित्य में अघोर शिवाचार्य का नाम सर्व प्रसिद्ध है। गुप्त एवं हर्ष काल में पाशुपत के मंदिर समस्त भारत में निर्मित किए गए। वेनसांग ने राख लपेटे पाशुपत योगियों का वर्णन किया है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन कृत मत्त विलास तथा वराहमिहिर की बृहत संहिता में पाशुपतों का वर्णन प्राप्त होता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में भी इनका वर्णन किया है। कापालिक शैव मत के कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इनके विरोधियों यमुनाचार्य एवं रामानुज ने भी इनका वर्णन किया है। कापालिक शैव धर्म का अतिवादी संप्रदाय है। संभवतः कापालिक मत का विकास दक्षिण भारत या दक्कन में हुआ था। 8वीं शताब्दी में यह दक्कन के हर क्षेत्र में व्याप्त था। 8वीं शताब्दी के पश्चात यह गुजरात, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। कापालिक का प्रथम विवरण याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त होता है। मैत्रायणी उपनिषद में कापालिक उन लोगों के लिए वर्णित है जो लाल वस्त्र एवं कुंडल धारण करते हैं। हालकृत गाथा सप्तशती में कापालिकों पर व्यंग किया गया है। उसमें एक ऐसे स्त्री कापालिक का वर्णन है जिसने अपने पति के चिता भस्म को अपने शरीर पर लगा रखा है। यह ग्रंथ लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। बौद्ध महायान ग्रंथ ललित विस्तार में कापालिकों को मूर्ख की संज्ञा दी गई है, जो शरीर पर शमशान भस्म मलते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, मुंडित हैं, त्रिदंड हैं, एक पात्र मानव कपाल तथा खडवंग को लेकर चलते हैं। हर्षचरित में भैरवाचार्य नामक दक्षिणाचार्य का वर्णन है जो कपालिकों के कर्मकांड का सिद्धास्त है। दंडी के 10 कुमार चरित में कलिंग के राजकुमार मंत्रगुप्त का वर्णन है जो शमशान के निकट एक वन में एक कापालिक तांत्रिक के चंगुल में फंस गया था। वायु पुराण, कर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णित है कि कलयुग में निर्ग्रंथ कापालिक आदि वर्णाश्रम व्यवस्था को आघात पहुंचाएंगे। ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णित है कि शिव ने प्रथमतः पाशुपत योग का निर्माण किया तथा अंत में कपाल योग बनाया। शंकराचार्य पर लिखे गए जीवन चरित्र में भी कापालिक योगियों का वर्णन प्राप्त होता है। मध्वाचार्य के शंकर दिग्विजय में उग्र भैरव नामक निरसंस कापालिक का वर्णन है जिसे शंकर ने कठिन परिश्रम के पश्चात विवाद में पराजित किया था। माधव एवं आनंदगिरी के द्वारा कर्नाटक के कर्कश नामक भैरव का वर्णन है जो शंकर से पराजित हुआ था। धनपति सूरी एवं आनंदगिरी ने उमत्तर भैरव नामक खुंखार भैरव का उल्लेख किया है जो शंकराचार्य का भक्त हो गया था। पूर्व मध्यकालीन अभिलेख में भी कपिलेश्वर मंदिरों के निर्माण का वर्णन प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के निर्मंद नामक स्थान से प्राप्त महासामंत महाराज समुद्रसेन के ताम्रपत्र अभिलेख में कपिलेश्वर मंदिर में शिव के मिहिरेश्वर रूप हेतु एक ग्राम दान का विवरण है। इसी मंदिर को सर्ववर्मन नामक शासक ने भी दान दिया था। कपिलेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मद्रास के निकट मैलापुर से प्राप्त होता है। एक समय में नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी कपालिक मंदिर माना जाता था। संपूर्ण भारत मुख्यतः दक्षिण भारत से कपिलेश्वर के इन मंदिरों में कपिलेश्वर, कपाल भैरव, कपालिका देवी, कपाल भैरवी आदि की मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। कपालिकों को महाव्रतधर भी कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के इगतपुरी ताम्रपत्र अभिलेख में कपिलेश्वर की आराधना तथा महावर्तियों के भरण पोषण हेतु सहायता का उल्लेख है। कपालिकों की आराधना पद्धति सौम्या सोम सिद्धांत कहलाती है। प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित टीकाओं के अनुसार सौम्य का अर्थ उमा के साथ या उमा सहित होता है। अतः इस शिव आराधना में उमा की उपस्थिति आवश्यक है। कपालिकों की आराधना शिव को भैरव के अवतार के रूप में व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित है। आनंदगिरी के शंकर विजय में यह उल्लेख है कि कपालिक शिव का सृष्टि का सृजक, पोषणकर्ता एवं संहारक मानते थे। आनंदगिरी ने भैरव के 8 प्रकार माने हैं: अशितन, रुरु, चंद, क्रोध, उन्मत्त, कपालिन, भीषण तथा संहार। इनके प्रथम 7 की तुलना क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, रुद्र, इंद्र, चंद्र तथा यम से की जाती है। 8वें संहार भैरव स्वयं भैरव का ही रूप है। मालती माधव तथा प्रबोध चंद्रोदय के अनुसार कपालिक मानव बलि देते थे, मानव मांस को पूजा पर अर्पित करते थे तथा शव के साथ साधना करते थे। शंकराचार्य में कपालिक विरोधी कर्कश के द्वारा मदिरा पान करने एवं मानव बलि का उल्लेख मिलता है। यशपाल कृत मोहरजय पराजय में एक कपालिक का वर्णन है जिसने एक सामंत के कपाल में मांस का भक्षण किया था। शंकर के एक अन्य विरोधी कपालिक उन्मत्त भैरव ने यह वर्णित किया है कि उसके पिता एवं पितामह मदिरा को निर्मित करते थे। मत्तविलास प्रहसन के अनुसार कपालिकों को मदिरा एवं स्त्री के द्वारा ज्ञान का मार्ग स्वयं शिव के द्वारा बताया गया था। चंडिकौशिक नामक ग्रंथ में मैथुन द्वारा कपालिकों के मोक्ष प्राप्ति का विवरण है। रामानुज के श्री भाष्य के अनुसार जो कपालिक स्त्री को आधार मानकर साधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सरित सागर में मनन मंजरी, चंद्रस्वामी, देवदत्त की कथाओं में कपालिकों का वर्णन प्राप्त होता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कपालिक पाशुपत अश्वपाद ने अपने आत्मज्ञान से अपने पुराने जन्मों का स्मरण कर लिया था तथा अपने रहस्यमय शक्ति से शिष्यों को कश्मीर भेजा था। कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय तथा भावभूति के मालती माधव में कपालिकों की सिद्धियों का वर्णन है। कपालिकों का उद्देश्य केवल परम ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं थी अपितु सांसारिक जीवन में भी सिद्धियों को प्राप्त करना था। ये सिद्धियां निम्न थी: अरिमाया, लंगिमा, गरिमा, महिमा, ईशत्व, प्राकम्य, वाश्यत्व, कामवाश्यत्व इत्यादि। व्यास के योगभास में भी कपालिकों के ऐसे विचारों का विवरण प्राप्त होता है। कालामुख भी कपालिकों की तरह ही अतिवादी शैव संप्रदाय है तथा महाकाल एवं काल भैरव स्वरूप की आराधना करता है। कालामुख को का वर्णन मुख्यतः पूर्व मध्य काल में कर्नाटक क्षेत्र में प्राप्त होता है। यमुनाचार्य एवं रामानुज ने इन संप्रदायों का वर्णन किया है। कालामुख संबंधी असंख्य अभिलेख कर्नाटक क्षेत्र में मिलते हैं। संभवतः इन शैव पूजकों को कालामुख इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने माथे पर काला टीका लगाते थे। रामानुज ने कालामुखों की निम्न विशेषताएं बताई हैं: कपाल में भोजन प्राप्त करना, सौ भस्म को पूरे शरीर में लगाना, भस्म को ग्रहण करना, मदिरा पात्र तथा दंड रखना इत्यादि। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि कालामुख पाशुपत संप्रदाय का एक अंग था तथा इसने पाशुपत की कई विशेषताओं को स्वीकार किया था। पहला, दोनों संप्रदाय लकुलिश को आराध्य देव मानते हैं। दूसरा, पाशुपत तथा कालामुख दोनों एक प्रकार के नाम रखते हैं तथा केदारनाथ एवं श्री पर्वत की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। तीसरा, कालामुख बोंटीय मुनि के द्वारा प्रतिपादित ईश्वर कृतवाद तथा पाशुपत के कारण कार्य में समानता है। चौथा, कालमुखों के कोंडी मठ में लकुलिश का लकुल सिद्धांत मुख्य धर्म ग्रंथ है। दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कालामुख के दो संप्रदाय थे: शक्ति परिषद तथा सिम्हा परिषद। शक्ति परिषद अधिक प्रसिद्ध संप्रदाय था। इसका प्रमुख केंद्र शिमोगा जिले में बेलगांव का केदारेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में दक्षिण केदारेश्वर स्थापित है। बेलगांव का पंचलिंग मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। 1287 की चित्रा प्रशस्ति के अनुसार सोमनाथ में पंचलिंग की स्थापना की गई थी तथा इसका निर्माणकर्ता त्रिपुरांतक था। बेलगांव का एक स्वयं मंदिर भी त्रिपुरांतक को समर्पित है। सोमनाथ के अभिलेखों में यह वर्णित है कि त्रिपुरांतक ने दो प्रमुख कालामुख केंद्रों हिमालय में केदार तथा कुरनूल में श्री पर्वत की तीर्थ यात्रा की थी। कालामुख के दूसरे संप्रदाय श्री परिषद के मंदिर गुंटूर, बेलारी, बीजापुर तथा गुलबर्गा जिलों में पाए जाते हैं। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय। वीरशैव संप्रदाय का प्रवर्तक अल्लम प्रभु को माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक बसव या बसवण था। बसव का जन्म 1125 ईस्वी में इंगलेश्वर बागेवाड़ी जिला बीजापुर में हुआ था। बसव का जीवन चरित्र 1370 ईस्वी में रचित बसव पुराण तथा 1505 ईस्वी के चन्न बसव पुराण से प्राप्त होता है। बसव ब्राह्मण था। इसके पिता मादिराज आराध्य संप्रदाय के माने जाने वाले थे तथा माता का नाम मांदलम्बी के प्राप्त होता है। बसव कलचुरी शासक बिज्जल का प्रधानमंत्री था। इसका विवाह बिज्जल के मंत्री बलदेव की पुत्री से हुआ था। बलदेव की मृत्यु के पश्चात ही उसे प्रधानमंत्री का स्थान प्राप्त हुआ। बसव ने बिज्जल से अपनी बहन का विवाह किया था। बसव तथा उसके भतीजे चन्न बसव ने राजकीय प्रभाव का प्रयोग कर वीरशैव संप्रदाय का प्रसार प्रारंभ किया। शैव पुजारियों जिन्हें जंगम कहा जाता था को अत्यधिक दान देने से राजकीय खजाना खाली होने लगा। बसव पर राजकीय धन के अपहरण का भी आरोप लगा। राजा ने बसव को दंडित करने का प्रयास किया। बसव ने राजा को विष देने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। उसके पश्चात यह मालप्रभा तथा कृष्णा नदियों के संगम पर बने संगमेश्वर मंदिर में निवास करने लगा। जैन साहित्य बिज्जलराय चरित्र में एक दूसरा वृत्तांत प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ के अनुसार राजा को विष दिए जाने के पश्चात राजकुमार ने बसव का मालाबार के उल्वी नामक स्थान तक पीछा किया जहां बसव ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। शैव मान्यता के अनुसार वह शिवलिंग में समा गया था। बसव की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा चन्न बसव शैव संप्रदाय का मुख्य प्रचारक हो गया था। बसव समकालीन शैव संतों में चन्न बसव, सिद्धराम, हरियर, राघवांक, पद्मरश, महादेवी, अक्क तथा एकांत राम याया के नाम प्रमुख हैं। बसव पुराण के अनुसार बसव शैव संप्रदाय का संस्थापक न होकर इसका एक प्रचारक था। वह एक राजनीतिक व्यक्ति था, अतः पूर्ण तथा अध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं हो सकता था। फिल्ट ने इन्हीं आधार पर शैव का संस्थापक एकांत राम रूया को माना है। एकांत राम याया ने बिज्जल के दरबार में चमत्कार दिखाया था तथा दिगंबर जैनों के विरुद्ध कार्यवाही की थी। आरजी भंडारकर इसकी उत्पत्ति आराध्य शैव संप्रदाय से मानते हैं जो उनसे अलग होकर एक नए संप्रदाय के रूप में स्थापित हो गया था। कुछ विद्वान शैवों की उत्पत्ति पांच पौराणिक आचार्यों रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण तथा विश्वकर्ण से मानते हैं। इन आचार्यों को पराशिव के पांच स्वरूपों क्रमशः जद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्प्रस्थ और ईशान का अवतार माना जाता है। उपयुक्त पांच पौराणिक आचार्यों ने क्रमशः ऋण सिद्ध, एको राम, पंडिताराध्य तथा विश्वराध्य के रूप में जन्म लिया था। इन्हें पांचाचार्य कहा जाता है। इन पांच आचार्यों ने क्रमशः केदार, उज्जैनी, श्रीशैलम, रंभापुर तथा वाराणसी में शैव मठ स्थापित किए थे। ये अपना गोत्र इन्हीं पंचाचार्य से स्थापित करते हैं। वीरशैव एवं शुद्ध शैव केवल शिव के उपासक हैं, जबकि सामान्य एवं मिश्र शैव शिव एवं विष्णु दोनों के उपासक हैं। वीरशैवों को लिंगायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री एवं पुरुष दोनों अपने शरीर पर शिवलिंग धारण करते हैं। रेशम के वस्त्र में या चांदी के स्पूट भी शिवलिंग रखकर गर्दन में लटकाते हैं। इन संतों की संख्या 770 मानी गई है तथा ये तमिल शैवाचार्य को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। वीरशैव विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च ब्रह्म जो सच्चित तथा आनंद के गुणों से युक्त है शिव है। इसे स्थल कहा जाता है। स्थल के दो स्वरूप माने जाते हैं। प्रथम स्थल स्वयं रुद्र या शिव है तथा द्वितीय स्थल शैव पूजक है। वीरशैव के अनुसार शिव स्वयं सृजक है तथा अपने को ईश्वर एवं व्यक्ति के रूप में विभाजित करते हैं। श्री कंठाचार्य नामक शैवाचार्य के अनुसार शैव का यह दर्शन रामानुज के विशिष्ट अद्वैत से प्रभावित है। वीरशैव उपनयन के आधार पर दीक्षा संस्कार करते हैं। तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों इसके अधिकारी हैं। यह जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते तथा विधवा विवाह को मान्यता देते हैं। वीरशैव मत में यह यज्ञ एवं तीर्थ यात्रा अमान्य है। वीरशैव पूजक ब्रह्म गायत्री स्थान पर शिव गायत्री का पाठ करते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसमें पारंपरिक ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया गया है। वीरशैव मत में अष्टावरण नियमों का पालन किया जाता है। ये निम्न है: गुरु के प्रति निष्ठा, शिव उपासना, जंगम के प्रति श्रद्धा, गाय के गोबर के भस्म की भभूति, रुद्राक्ष धारण करना, पदोदका गुरु अथवा जंगम का पैर धोकर पीना, प्रसाद गुरु शिव तथा जंगम को भोजन अर्पित करना तथा शेष स्वयं ग्रहण करना, पंचाक्षर नमः शिवाय का जप करना। वीरशैव मत में और भी कई प्रकार के नियम माने गए हैं। शिव के रचनात्मक गुण दो प्रकार के हैं। पहला कला, इसे पराशिव जो ईश्वर का अद्वैत स्वरूप है सृष्टि की रचना करता है। दूसरा भक्ति, इसमें शिव के सामरस्य प्राप्त होता है। वीरशैव या शैव साहित्य वचन शास्त्र कहलाते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। बसव वचन नामक कृति में 213 कवियों का योगदान प्राप्त होता है। इनमें प्रमुख वचन कवि निम्न है: बसव, बसव के समस्त वचन देवता कुडल रामक के प्रति समर्पित है। महादेवी अक्क, इसके वचन मल्लिकार्जुन देव के प्रति समर्पित हैं। अल्लभ प्रभु अर्थात प्रभु देव गुहेश्वर देव के प्रति समर्पित हैं। हरिहर, हरिहर की 12वीं शताब्दी में लिखी गई कृतियां निम्न हैं: गिरजा कल्याण, शिव शरण, रागलेगुलु, राघवांक। ये कन्नड़ काव्य में 6 लाइन के पद प्रयोग करने वाले प्रथम कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना हरिश्चंद काव्य, सोमनाथ चरित तथा हरिहर महत्व है। केरिय पद्मरस, पद्मरस को तार्किक चक्रवर्ती तथा शरण कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना दीक्षा बोध है। सोमेश्वर पलकुरी के सोम, इनके प्रमुख वचन बसवन पंचमध्य, सदगुरु रंगेले, शील संपादन तथा सोमेश्वर शतक है। भीम कवि, प्रमुख रचना बसव पुराण है। चमरस, प्रमुख रचना प्रभुलिंग लीले है। लखन, इनकी रचना सिर तत्व चिंतामणि है। श्रीपति पंडिताचार्य, इन्होंने वेदांत सूत्र पर शीकर भाष्य नामक टीका लिखी थी। गुरु बसव ने 7 कृतियों का संग्रह 7 काव्य लिखा। देव कवि सोमराज सिद्धेश्वर। शिव विशिष्टाद्वैत्व, शिव विशिष्टाद्वैत्व शिवाद्वैत आचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। 11वीं शताब्दी में जन्मे हरिदत्ताचार्य इसके प्रमुख आचार्य थे। इनकी कृतियां श्रुति सुवित्तमाला तथा हरिहर्ता तम्य भी है। श्रीकंठाचार्य इसमें सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। ये विक्रम चोल के गुरु थे तथा रामानुज के समकालीन थे। इनकी प्रमुख कृति बादरायण के ब्रह्मसूत्र पट्टी का ब्रह्म मीमांसा भाष्य या श्रीकंठ भाष्य है। इसके पश्चात 12वीं शताब्दी में अघोर शिवाचार्य का स्थान है। इन्होंने भोजदेव के तत्व प्रकाशिका पर टीका लिखी तथा मृद्रामन की रचना की थी। उमापति शिवाचार्य का काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने पुडेश्वर संहिता पर अपनी टीका लिखी थी। शिव विशिष्टाद्वैत के अन्य प्रमुख आचार्य नानव शिवाचार्य है। ये तंजौर के सुर नारकोयल मठ में निवास करते थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ छाया परिभाषा, शिवाग्र पद्धति तथो क्रिया दीपिका है। नीलकंठाचार्य का काल लगभग 14वीं शताब्दी है। इन्होंने अपनी रचना शिवाद्वैत तथा वीरशैव दर्शन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अप्य दीक्षित नामक आचार्य ने बेल्लौर के नायकों से संरक्षण प्राप्त किया। अप्य का दर्शन अद्वैत पर आधारित ग्रंथ रत्नत्रय परीक्षा है। इसके वेदांत अद्वैत शैव एवं आगम मतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अप्पय ने विभिन्न विषयों पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। इनकी चित्रमीमांसा, कुवलयानंद वित्त वार्तिक तथा लक्ष्य रत्नावली काव्य रचना है। अप्पय के शिवाक्रमणी दीपक, श्रीकंठ के ब्रह्मसूत्र पट्टी का तथा चतुर्मत सार संग्रह, माधव रामानुज संकल तथा श्रीकंठ के विचारों की समीक्षा है। 17वीं शताब्दी के एक अन्य प्रसिद्ध संत तयमुनावर ने वेदांत एवं शैव सिद्धांत में एकत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह त्रिचूरापल्ली के नायक के दरबार में एक उच्च अधिकारी था। शिव विशिष्टाद्वैत शंकर के अद्वैत तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैत के मध्य की श्रृंखला है। सृष्टि के संबंध में शिव की 5 कृतियां हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह। सृष्टि रचना का प्रमुख उद्देश्य आत्मा को मोक्ष प्राप्ति माना गया है। इसके अनुसार कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। सत्कार्यवाद तथा सत्कृत्य न्याय में विश्वास करते हुए अर्थात यदि शिव की आराधना की जाए तो आत्मा को शिवत्व प्राप्त होता है। इसके पश्चात आत्मा विरजा अर्थात विष्णुलोक एवं शिवलोक के मध्य नदी को सुगमता से पार करके शिवलोक पहुंच सकती है। कश्मीर शैव संप्रदाय या कश्मीर शैव संप्रदाय इसलिए कहलाता है क्योंकि इस दर्शन को विकसित करने वाले विद्वान कश्मीर के निवासी थे। इसे त्रिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसके तीन शाखाएं हैं, आगम शास्त्र, स्पंदन शास्त्र और प्रतिभिज्ञा शास्त्र। TMP महादेवन इस पद्धति के तीन अव्यय मानते हैं, त्रिक, स्पंद और प्रतिभिज्ञा। महादेवन ने कश्मीरी शैव पद्धति को आभासवाद तथा पदार्थ शास्त्र भी कहा है। त्रिक दर्शन में पति पास तथा पशु की अवधारणा भी व्यक्त है। पति का अर्थ स्वयं शिव है, पशु का अर्थ जीवात्मा तथा पाश का अर्थ वह बंधन जिसके कारण शिवरूप होते हुए भी आत्मा को पशुत्व की प्राप्ति होती है। जीवन का उद्देश्य यह है कि साधना द्वारा पाश से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त किया जाए। कश्मीर शैव को त्रिक कहने के कुछ और भी कारण माने गए हैं। कश्मीर शैव अनुयायी 92 आगमों में केवल 3 सिद्ध यमक तथा मालिनी में विश्वास करते हैं। एक अन्य विचारधारा के अनुसार ये 3 प्रकार के ज्ञान अभेद, भेदाभेद तथा भेद में विश्वास करते हैं, इसलिए त्रिक कहलाते हैं। आरजी भंडारकर ने कश्मीर शैव मत के 2 संप्रदाय माने हैं, स्पंदन शास्त्र एवं प्रतिभिज्ञ शास्त्र। प्रतिभिज्ञ शास्त्र का वर्णन माधव ने स्वदर्शन संग्रह में किया है। स्पंदन शास्त्र का संस्थापक वशुगुप्त एवं उसके शिष्य कल्लट को माना जाता है। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, शिवसूत्रम। परंपरा के अनुसार इसका ज्ञान स्वयं शिव ने वशुगुप्त को दिया था। स्पंदकारिका इसका लेखक कल्लट था। कल्लट कश्मीर के शासक अवंती वर्मन के समय निवास करता था। शिवसूत्रम एवं स्पंदकारिका को संयुक्त रूप से स्पंदन सर्वस्व कहा जाता है। स्पंदन शास्त्र के अनुसार शिव अपने में पूर्ण है, इसमें स्पंदन शक्ति है। स्पंदन से पूर्णतः भिन्नता के रूप में परिवर्तित होती है, अंततः यह भिन्नता पूर्णता को प्राप्त होती है। प्रतिभिज्ञ धारा का संस्थापक सोमनंद को माना जाता है। वह वशुगुप्त का शिष्य था, उसने शिव दृष्टि की रचना की थी। प्रतिभिज्ञ धारा के प्रमुख ग्रंथ उदयाकार के रचयिता हैं तथा इन सूत्रों पर अभिनव गुप्त की टीकाएं प्रतिभिज्ञ विमर्शिनी तथा प्रतिभिज्ञ विवर्त विमर्शिनी है। अभिनव गुप्त ने परमार्थसार की भी रचना की थी। अभिनव गुप्त का काल 993 ईस्वी से 1015 ईस्वी माना जाता है। अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने 1000 ईस्वी में प्रतिभिज्ञ हृदय की रचना की थी। प्रतिभिज्ञ का अर्थ ज्ञात होना या आभास होना है, जो कि सब कुछ शिव है। ऐसी अवस्थाएं आत्मा शिवत्व को प्राप्त होती हैं। शंकर के अद्वैत के विपरीत इन शैव संप्रदाय में जगत माया नहीं है, बल्कि वास्तविक या यथार्थ है, क्योंकि यह परम सत्य शिव का ही एक रूप है। सोमनंद के प्रतिभिज्ञ धारा तथा शंकर के अद्वैत में निम्न भेद माने जा सकते हैं। पहला, शंकर ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं, जबकि सोमनंद ने शिव को परम माना है, जो देवी शक्ति से युक्त है तथा शिव एवं शक्ति अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा, शंकर के अनुसार ब्रह्म या ईश्वर सृजक, पालक एवं संहारक है, जबकि सोमनंद शिव को सृजक, पालक एवं संहारक मानते हैं। तीसरा, शंकर के अनुसार माया न तो वास्तविक है न ही काल्पनिक, यह अपरिभाषित है, जबकि प्रतिभिज्ञ के अनुसार माया शिव की वास्तविक शक्ति है। चौथा, शंकर ने जगत को मिथ्या माना है, जबकि प्रतिभिज्ञ जगत को वास्तविक मानते हैं। कश्मीर शैव पद्धति भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित शैव परंपरा से भिन्न है। तंत्र का पालिक तथा कालामुखो का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इन शैव संप्रदाय के पाशुपत एवं लकुलिश का वर्णन नहीं है। इनके परंपरागत शैव धर्म के सच्चे सदाचारी एवं मूलभूत विषयों को स्थान दिया है। इन दोनों संप्रदाय के अतिरिक्त कश्मीर में एक अन्य शैव संप्रदाय का वर्णन प्राप्त होता है, इसे त्र्यंबक कहा जाता है। संभवतः यह कश्मीर का प्राचीनतम शैव संप्रदाय है। सोमनंद की शिव दृष्टि में इन संप्रदाय का वर्णन है। नाथपंथी, नाथपंथी मध्यकालीन शैव आंदोलन है, इसे हठयोग भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का आदि संस्थापक शिव को माना गया है। नाथपंथ के वास्तविक संस्थापक मत्स्येन्द्र नाथ थे, जिनका जन्म 10वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ था। गोरखनाथ तथा मच्छंदर नाथ ने इस मत को प्रचारित किया। मत्स्येन्द्र नाथ ने योगिनी कौल नामक मत का प्रतिपादन किया, जिसका वर्णन उसकी पुस्तक कोल ज्ञान निर्णय तथा अकुलवीर तंत्र में है। इनमें शिव को अकुल तथा शक्ति को कुल माना गया है, जिनके मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। मत्स्येन्द्रनाथ को पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर कहा तथा तिब्बत में सिद्धुल्लुई पाद का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ का जन्म 10-11वीं शताब्दी में पाकिस्तान में रावलपिंडी में हुआ था। गोरखनाथ ने इस विचारधारा में सुधार किया तथा अपनी कृतियों योग मार्ग, गोरख सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष संहिता तथा मराठी भाषा में दत्त गोरक्ष संवाद, गोरखकंठाद्बोध, गोरक्ष लीला, गोरक्ष कृत योगमन्यमेव, गोरक्ष गीता, गोरक्ष अमरनाथ संवाद आदि में पूर्ण ब्रह्मचर्य पर बल, इंद्रिय निग्रह, योग साधना से कुंडली जागरण आदि पर बल दिया। नाथपंथी कानों में बड़े कुंडल धारण करते हैं जिससे उनके कान फट जाते हैं, इसी कारण उन्हें कनफाट योगी भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में नाथ तथा सिद्ध योगियों का विधान है। प्रारंभ में 9 नाथ एवं 84 सिद्ध प्रमुख थे। नाथपंथ के योगी अलख निरंजन की ध्वनि करते हैं। गोरखनाथ से संबंधित कुछ प्रमुख स्थान है। जिला झेलम पाकिस्तान का गोरखनाथ का टीला, पेशावर का गोरखतहरी तथा बलूचिस्तान के लालबेला में गोरख की धुनी आदि प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ के अनुसार शिव ही परम तत्व है, जबकि जब उसके सृष्टि की इच्छा होती है तब वह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शक्ति की 5 स्थितियां हैं, निज, पर, अपरा, सूक्ष्म, कुंडली। इसी प्रकार उन्होंने शिव के ही 5 रूपों का निर्देशन दिया है, अपर, परम, सूक्ष्म, निरंजन और परमात्मा। उसमें आनंद के 5 स्तर हैं, परमानंद, प्रबोध, चिद्य, प्रकाश और सोहम। फलतः से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसकी प्रतिकृति पिंड है। कुंडली की शक्ति को सुषुम्ना के मार्ग से 6 चक्रों के ऊपर की ओर सिर स्थान में अमृत केंद्र सहस्त्र सार में ले जाते हैं, तब शक्ति और शिव का मिलन होता है अथवा परम शिव की ही प्राप्ति होती है। यह समस्त क्रिया योग के अंतर्गत आती है। इस साधना में यह माना जाता है कि श्वास के नियमन और रसों के प्रयोग से योग संप्रष्ट होता है। वस्तुतः गोरखनाथ के कारण नाथ संप्रदाय का शीघ्रता से विकास हुआ। यही नहीं, गोरखनाथ से संबंधित अनेक चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हुई तथा यह विश्वास व्यक्त किया गया कि उनका नाम लेने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे अपनी साधना से उच्चतम आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच गए थे। नेपाल, तिब्बत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत में उनके देवत्व से संबंधित अनेक अनुश्रुतियां फैली। उन्हें शिव, ब्रह्म और विष्णु जैसे देवताओं की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया गया था तथा समाज में उनका उच्च स्थान स्वीकार किया गया था। गोरक्ष संहिता और गोरक्ष सिद्धांत जैसे उनकी कृतियां अत्यंत ख्याति प्राप्त हैं। उनके हठ योग और सहजयान योग का तत्कालीन समाज में तीव्रता से प्रसार हुआ, जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन को आंदोलित किया। उनके सिद्धांतों में प्राचीन सैवो, आजीविको, व्रजयान, बौद्धो आदि के मतों और सिद्धांतों का अनुपम समन्वय है। अनंग व्रज या रमणवत जैसा उनका बौद्ध नाम भी मिलता है। वस्तुतः गोरखनाथ ने महात्मा बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग का अनुगमन किया। उन्होंने बौद्ध और हिंदू तांत्रिकों के अनैतिक क्रियाओं तथा आदर्शवाद के आध्यात्मिक सूक्ष्मीकरण और यौगिक क्रियाओं की अतिरंजना का विरोध किया। संयम और सदाचरण को उन्होंने प्रधान आधार माना, साथ ही सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया। गोरखनाथ के पश्चात नाथ संप्रदाय में अनेक शिष्य में जिन्होंने अपनी साधना और चमत्कारिक शक्ति से लोगों को आकृष्ट किया। ऐसे सिद्धों में कन्हप्पा, चरपटी, चौरंगी नाथ, गोपीचंद आदि प्रमुख हैं। ये लोग अपनी घर गृहस्थी त्याग कर योगी बनकर अपने फटे कानों की मुद्रा धारण करके, सिर पर जटा रखकर, गले में रंग बिरंगे जोगड़े पहने, कंधे पर सिंगिया रखे और हाथ में सोटे लिए घर घर अलख जगाते घूमते थे तथा अलख निरंजन की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजारित करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और तांत्रिकों की जीवन पद्धति में आचरण, नैतिकता आदि का कोई स्थान नहीं था। उनके दर्शन में खाने पीने और भोगने की खुली छूट थी। ज्ञान सिद्धि में इंद्रभूति का कथन है कि योगी यह नहीं देखता था कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कुलारा वितंत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है कि कौलिकों को वे सभी वस्तुएं खानी चाहिए जिन्हें सभी लोग वर्जित मानते हैं, उन पेयों को ग्रहण करना चाहिए जिन्हें लोग निंदा और निद्ध मानते हैं तथा उन स्थानों पर जाना चाहिए जहां के लिए लोग मना करते हैं। वस्तुतः कौल अनुयायियों के मतानुसार मांस, मद्य, रक्त, मज्जा, विष्ठा आदि विहित थे। ऐसा लगता है कि उनके दर्शन में ऐसी निंदनीय बातों का समावेश इसलिए किया गया कि वे अपने इन कार्यों से समाज की वर्तमान गति विधियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में कौल अनुयायियों के कार्यों का लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त किया गया है, जैसे गौमांस का अर्थ जीव को मोड़कर तालु में लगाना था, वारुणी का अर्थ सिर स्थान में ब्रह्मरथ में समीप सहस्त्र दल कमल की जड़ के निकट की में स्थित चंद्रमा से रिसने वाला रस था। चार पदों की टीका करते हुए मुनि दत्त ने कहा कि डमुनी का अर्थ नरम और शराब विक्रय करने वाली का अभिप्राय ईड़ा और मिंगला नामक नाड़ियों के नीचे स्थित सुषुम्ना नाड़ी से है। इसी प्रकार की लाक्षणिक व्याख्या हैव्रज तंत्र में की गई है, जिसमें ललना का अर्थ स्त्री नाक और स्नान की नाड़ी है तथा मुद्रा का अभिप्राय भी स्त्री न होकर उंगलियों को विशेष चिन्ह में किया गया है। इस तरह मध्य मांस और इत्यादि जो समाज में स्वीकृत हैं, बल्कि इसके अर्थ योग और रस की व्रज की साधनाओं से अभिव्यक्त किए गए, किंतु ऐसे लाक्षणिक अर्थ लेकर जो समाज में प्रचलित नहीं थे। नाथपंथियों और योगियों ने समाज की वर्तमान प्रणाली पर अपना शोक व्यक्त किया। उनके विचारों में वर्तमान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रति प्रबल विद्रोह और व्यापक असंतोष था, जिससे तत्कालीन भारत में सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई। नयनार शैव मतों के लिए प्रयुक्त तमिल शब्द है। इनका समय काल 6वीं से 9वीं शताब्दी माना जाता है तथा नयनारों की संख्या 63 मानी गई है। नयनार संतों में ब्राह्मण, व्यापारी, किसान, चरवाहे, कुम्हार, बुनकर, मछुआरे, अछूत इत्यादि सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। प्रमुख नयनारों में कोरक्कल अम्मे नामक स्त्री, आदुनर का नंदन, सिरोमुंडर अप्पर अथवा तिरुनाव करशो, त्रिज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिकावाचकर इत्यादि हैं। इन्हें चार प्रमुख नयनारों को समयाचार्य कहा जाता है। कालक्रम के अनुसार इनके नाम निम्न हैं: अप्पर दास मार्ग का प्रतिपादन, संबंदर सतपुत्र मार्ग का प्रतिपादन, मणिकावाचकर सखा मार्ग का प्रतिपादन, सुंदर सत मार्ग का प्रतिपादन। पहला अप्पर, इसका नाम त्रिवानवुक्करशु था। इसका घरेलू नाम मरुनिक्कियार था। संबंदर ने इससे मिलकर इसे अप्पा कहकर संबोधित किया, इसलिए अप्पर कहलाया। अप्पर का जन्म दक्षिण ऑर्किड के तिरुवामूर के एक शैव मत बेल्लार परिवार में हुआ था। अप्पर ने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की तथा श्रवण के रूप में पाटलिपुत्र के एक विहार में निवास करने लगे। जैन अनुयायी के रूप में इसका नाम धर्मसेन था। बड़ी बहन तिलकवती के प्रभाव में यह पुनः शैव धर्म में सम्मिलित हो गया। जैन धर्म के भिक्षुओं ने इस बात से नाराज होकर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम से शिकायत की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अप्पर की कड़ी परीक्षा ली। शिव की कृपा से वह सभी परीक्षाओं में खरा उतरा। महेंद्र वर्मन ने अप्पर की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर स्वयं शैव धर्म स्वीकार कर लिया। अप्पर द्वारा 307 पांडिगम या स्तुतियां रची गई हैं, जो तिरुमुरे के प्रथम 3 अध्यायों में है। अप्पर एवं समंदर की भेंट तंजौर जिले के शियाली नामक स्थान पर हुई। बिल्लाल परिवार से संबंध होने के कारण जनसाधारण में इसके उपदेशों का तेजी से प्रसार हुआ। अप्पर ने शिव के 3 रूपों की कल्पना की है। एक रूप में शिव विश्व का संहारक है, दूसरे में शिव एवं शक्ति का संयोग है, तीसरा स्वरूप प्रकाश स्तंभ है। यह अनिवर्चनीय एवं अवर्णनीय है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य इसी अंतिम स्वरूप को प्राप्त करना है। दूसरा संबंदर, संबंदर या तिरुज्ञान अप्पर का समकालीन था तथा शियाली के कोंडिया गोत्री ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। समंदर परंपरा के अनुसार 3 वर्ष की आयु में ही पार्वती से ज्ञान को ग्रहण किया था। समंदर ने शिव भक्ति पर 384 पंडिगम की रचना की। इसकी रचनाओं को तेवारम में प्रथम स्थान दिया गया। समंदर के ज्ञान से प्रभावित होकर पांडे राजकुमारी मौर्यक्कर ऋषि तथा उसके एक मंत्री कल्लुचिड्डे ने उसे आमंत्रित किया। राजकुमारी अपनी पति एवं प्रजा को शैवमत में परिवर्तित करना चाहती थी। संबंदर को इस कार्य में सफलता मिली। परंपरा के अनुसार 8000 जैनों को सूली पर चढ़ा दिया गया, जिसकी स्मृति में मदुरा में आज भी उत्सव मनाया जाता है। समंदर पांडे शासक मानवर्मा, अवनिशूल पाणी या अरिकेश्री मारवर्मा तथा नरसी पल्लव के समकालीन था। तीसरा सुंदर मूर्ति, शैव सम्याचारों में तीसरा महान संत सुंदर या सुंदर मूर्ति है। इसका जन्म 8वीं शताब्दी में निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में इसकी सुंदरता से मुग्ध होकर तिरुनपंडनाडु के सेनापति नरसिंह मुन्नय दरेयन ने इसका पालन पोषण किया था। व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण विवाह तय होने पर भी उसने विवाह नहीं किया था, लेकिन तिरुवालूर के एक नर्तकी तथा तिरुवोडियोर के शूद्र कन्या के प्रेमापाश में बंध गया था। सुंदर मूर्ति की आयु केवल 18 वर्ष मानी गई है। परंपरा के अनुसार उसने 10,000 पांडिगया भक्ति गीतों की रचना की है। इसमें केवल 100 प्राप्त हैं, जो तिरुमुरे के 7वें अध्याय में है। इनके सबसे प्रसिद्ध पद तिरुतोटोगे हैं। वह चेर शासक चेरमान पेरुमाल का मित्र था। उसकी मृत्यु तिरुवनचिल कल्लम नामक स्थान पर हुई थी। सुंदर मूर्ति को तंबीरान तोलन भी कहा जाता है। सुंदर मूर्ति के माता पिता की गणना 63 नयनारों में की जाती है। चौथा मणिकावाचकर, मणिकावाचपर का जन्म वादवुर में हुआ, इसलिए इसे तिरुवादवर कहा जाता है। यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। पांड्य शासक अल्लिकेसरी पराकोशम मारवर्मन में इसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस पद पर कार्य करते हुए भी यह शिव भक्ति में तलीन रहता था। एक बार शासक ने मणिकवाचकर को घोड़े क्रय करने के लिए तिरुपत्तूरे भेजा। घोड़े खरीदने के बजाय उसने सारा धन मंदिर निर्माण पर खर्च कर दिया, जिससे वह सेवा मुक्त कर दिया गया। उसके पश्चात उसने अपना सारा जीवन शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। उसके भक्ति गीतों का संग्रह तिरुवाचकम में प्राप्त होता है, जो उसके आध्यात्मिक जीवन की आत्मकथा है। तिरुवाचकम का अंग्रेजी अनुवाद जीयू पोप ने किया है। मणिकवाचकर को शिव ज्ञान तिरुपपुरे नामक स्थान पर हुआ तथा चिदम्बरम में उसका मुख्यालय था। यह उसकी मृत्यु हुई थी। तमिल शैव साहित्य में नयनार साहित्य सबसे प्रमुख है। 11वीं शताब्दी में नंबी अंडार नंबी ने नयनार साहित्य को तिरुमूरे के शीर्षक से 11 अध्यायों में संकलित किया था। नंबी को तमिल व्यास भी कहा जाता है। ये निम्न है। प्रथम सात तिरुमूरे को तेवारम कहा जाता है। तेवारम में संबदर, अप्पर और सुंदर की स्तुतियां हैं। तेवारम को द्रविड़ वेद भी कहा जाता है। दूसरा, आठवीं तिरुमूरे के तिरुवाचकम कहा जाता है, इसमें मणिकवाचकर की स्तुतियां हैं। तीसरा, नई तिरुमूरे को तिरु इशेप्पा कहा जाता है, इससे विविध स्तुतियां हैं। चौथा, दसवीं तिरुमूरे को तिरुमंदिरम अथवा मंदिरम कहा जाता है, इसमें तिरुमूलर की 3000 रचनाएं हैं। पांचवा, ग्यारहवीं तिरुमूरे में नक्कीकर से नंबी तक की रचनाएं हैं। इस साहित्य में अतिरिक्त सेविल कलार ने 12वीं शताब्दी के मध्य पेरी पुराणम की रचना की। इसमें 63 नयनारों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। के आर श्रीनिवास अयनगर पेरी पुराणम को 12वीं तिरुमूरे मानते हैं, लेकिन तिरुमूरे की 11 संख्या सर्वमान्य है। संबद्धर की एक पंडिगम तिरुमूरे में सम्मिलित नहीं है। यह तंजौर जिले के तिरुवड्डेवाइयल के मंदिर में एक पत्थर पर उत्कीर्ण है। तिरुमूरे में वर्णित प्राचीनतम रचना केरे कल्लार अम्मे नामक स्त्री संत की है। इसके पश्चात एयरडीगल काडवरकोन का उल्लेख है कि जिसकी रचना छत्तीरुवेणा है। सिरुटोंडर नामक एक अन्य नयनार की रचनाएं भी वर्णित है। नयनार साहित्य के पश्चात शैव सिद्धांत शास्त्र दक्षिण शैव परंपरा के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। यह साहित्य सबसे पहले संस्कृत भाषा में अघोर शिव सदियो ज्योतिस्त अथवा भोजराज के द्वारा रचा गया। तमिल भाषा में इसका प्रथम श्रेय मेयकंड विदेव तथा उसके पश्चात अन्य शिवाचार्यों का है। तमिल शैव सिद्धांत शास्त्रों की संख्या 14 है, जिसमें निम्नलिखित मेयकंड देवकृत शिव ज्ञान बोधम, अरुलंदनी कृत शिव ज्ञान सिद्धियर, उमापति कृत शिव प्रकाश है तथा मनवाचकम कंडवार कृत ऊणे वेगलकम अति प्रशंसनीय है। चार शैव समयाचारों की तरह ही शैव सिद्धांत शास्त्र में चार सिद्धांताचार्य अथवा संतानाचार्य का उल्लेख हुआ है। पहला मेकंड देव, दूसरा अरुलंदिनी, तीसरा मरे ज्ञान संबद्धर, चौथा उमापति। मरे ज्ञान संबद्धर की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। उमापति शिवाचार्य में तिरुवलट पयन, पोटी परोडे, वीड़ा बेम्बा, कोडी कवि दंडे, निर्विल कंकम, संकल्प निराकरणम, निंजुविडु शिव प्रकाशम आदि की रचना की थी। शिव प्रतिमाएं, शिव को मूर्ति के रूप में सामान्यतः निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। मुखलिंगम शिव चंद्रशेखर, कल्याण सुंदर मूर्ति अथवा वैवाहिक मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, व्याख्यान मूर्ति, वीराधर दक्षिणा मूर्ति, नित्य मूर्ति, अर्ध नारेश्वर मूर्ति, हरिहर मूर्ति, अनुग्रह मूर्ति, चंडेशन अनुग्रह, रावण अनुग्रह, गंगाधर मूर्ति, पशुपत्रा शास्त्र दान मूर्ति, घटना प्रदर्शन, गजासु संहार मूर्ति, त्रिपुरार्तकन मूर्ति, अंधकासुरवध मूर्ति, कालारी मूर्ति, कामांतक मूर्ति, शिव के उग्र रूप भैरव मूर्ति, विरूपाक्ष मूर्ति, अघोर मूर्ति, कंकाल मूर्ति। अवधारणा संबंधी एकादश रुद्र, मूर्त्यष्टक, विंधेश्वर इत्यादि। देवों में शिव का वर्चस्व सकवाद सर्वेश लिंगोद्भव। शुद्ध शैव सिद्धांत पर आधारित सदाशिव, महासदाशिव, महेश इत्यादि। शिव चंद्रशेखर सामान्यतः खड़ी अवस्था में है। बैठी अवस्था में मूर्ति को सुखासन मूर्ति कहा जाता है। सुखासन मूर्ति अकेले भी है तथा उमा और स्कंद के साथ भी उमा महेश्वर तथा सोम स्कंद मूर्ति कहा जाता है। यह दोनों प्रकार दक्षिण भारत में प्रचलित है। कल्याण सुंदर अथवा वैवाहिक मूर्ति शिव तथा उमा के विवाह को प्रदर्शित करती है। देश के अनेक स्थानों पर प्राप्त सबसे उत्कृष्ट एलिफेंटा में उत्कीर्ण उमा तथा शिव की यथास्थान मुद्रा के चारों ओर अन्य प्रतिमाएं। दक्षिणा मूर्ति ज्ञान मूर्ति, व्याख्यान मूर्ति तथा विड़ाधर मूर्ति विशेष कर दक्षिण भारत में प्राप्त नित्य मूर्ति देश के अनेक स्थानों में प्राप्त नित्य मूर्तियां अनेक प्रकार की हैं, जिसमें शिव नटराज सबसे उत्कृष्ट है। यह अधिकांश काश्य की बनी है। उदाहरण, एलोरा तथा चिदम्बरम मंदिरों में अनेक नित्य मुद्राएं हैं। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में 108 नित्य मुद्राएं हैं। उदाहरण के लिए चतुर, कटिशम, ललित, ललाट, तिलक, तलस्फोटित इत्यादि। शिव मंदिरों में नटराज के लिए नटम सभा अथवा सभा के नाम से एक अलग स्थान होता है। चिदम्बरम की नटन सभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नटराज के भिन्न अवयवों की प्रथम व्याख्या मानवा चंकमा दनदार की कृति उन्मेलिविकल्लम में दी गई है, आधुनिक समय में कुमार स्वामी इत्यादि के द्वारा। नवी शताब्दी के उत्तर भाग में प्रादुर्भूत तिरुवल्ली शरणम पटल पर पत्थर में प्रथम प्रकरण, प्रातक प्रथम चोल के काल में पूंजे एक एक टाक के तोरण में तथा 940 ईस्वी के तुरैयूर स्थित मंदिर के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इत्यादि। इस प्रकार आरंभिक चोल मंदिरों का एक सामान्य अंग बन गया। यह मूर्तियां नादंत नित्य मुद्रा अथवा आनंद तांडव मुद्रा में हैं। नित्य मुद्रा में दाहिना पैर मुवलक की पीठ पर है, बायां पैर तिरछा उठा हुआ है, हाथों की संख्या 4 है, सामने का सीधा हाथ अभय मुद्रा में है, सामने का उल्टा हाथ डोल अथवा गजहस्त मुद्रा में है तथा उल्टे पैर को इंगित करता है, पीछे का सीधा हाथ डमरू धारण किए हुए है, पीछे का उल्टा हाथ अग्निपिंड धारण किए हुए है। संपूर्ण प्रतिमा एक अंडाकार प्रभा जिसकी परिधि पर अग्निपुंज से है वह घिरी हुई है। उड़मे विकलम की व्याख्या, पूरी रचना शिव के पंचकृत को दर्शाती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरुभाव तथा अनुग्रह। सृष्टि डमरू से, स्थिति अभय मुद्रा से, संहार अग्नि से, तिरुभाव गजहस्त मुद्रा से, अनुग्रह उठे हुए पैर से। बंगाल तथा पूर्वी भारत में नटराज 10-12 हाथ नंदी की पीठ पर आनंद विभोर नाचते हुए अन्य दैवी प्रतिमाओं से घिरा हुआ 10 हाथ सहित प्रतिमा मत्स्य पुराण में वर्णित नित्य मुद्रा में है। इस प्रकार की प्रतिमा का उत्कृष्ट उदाहरण ढाका जिले के शंकर बाधा गांव से प्राप्त पाल युग की है। हरिहर मूर्ति शिव तथा विष्णु का संयुक्त रूप, दाएं भाग में शिव तथा बाएं भाग में विष्णु गुप्त काल से प्राप्त। अनुग्रह मूर्ति उत्तर तथा दक्षिण भारत में प्राप्त। चंडेश्वरुग्रह, स्वर्ण अनुग्रह, गदाधर मूर्ति, पाशुपस्तास दान मूर्ति, घटना प्रदर्शन मूर्तियां, गजासुर संहार मूर्ति विशेषकर दक्षिण भारत में प्राप्त। त्रिपुरांतकर मूर्ति एलोरा तथा एलिफेंटा में उत्कीर्ण। अंधकासुर वध मूर्ति एलोरा तथा एलिफेंटा में उत्कीर्ण। उपयुक्त मूर्तियां विभिन्न राक्षसों के संहार को प्रदर्शित करती हैं। कालारी मूर्ति मार्कंडेय का जीवन समाप्त करने के लिए शिव द्वारा काल अथवा यम को दंडित करना एलोरा में उत्कीर्ण। कामांतक मूर्ति शिव के उग्र रूप भैरव मूर्ति। भैरव 64 प्रकार के हैं, जिन्हें 8 के समूह में क्रमशः निम्नलिखित के अंतर्गत माना जाता है, अंशितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण तथा संहार। भैरव प्रतिमाएं सामान्यतः बटुक भैरव के रूप में पाई जाती हैं। बटुक भैरव आंखें गोल आकार में, मुख पर डरावनी मुस्कान तथा दोनों पैर निकले हुए दांत, हाथों को खड़वाकर और सूलता कपाल धारण किए हुए, लकड़ी की खड़ाव पहने कुत्ते के साथ। अतिरिक्त टांग भैरव संहार के वर्ग में से एक, भैरव के अत्यंत जीर्ण स्वास्थ्य में खड़ी प्रतिमा, 3 पैर, तीसरा पैर अतिरिक्त अंग है, पास में अनुष्णभूत प्रतिमा जिसमें एक काली है, एलोरा में पत्थर पर उत्कीर्ण। विरूपाक्ष बंगाल में प्राप्त अत्यंत भयंकर रूप। अघोर बंगाल में प्राप्त अत्यंत भयंकर रूप कंकाल मूर्ति विशेषकर दक्षिण भारत में प्राप्त। कम भयंकर शिव द्वारा अपने त्रिशूल पर विश्व के सेन का कंकाल धारण किए हुए, विश्व के सेन विष्णु का द्वारपाल था, उसने शिव को विष्णु के पास जाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए शिव ने उसका वध कर दिया था। बिच्छाटन मूर्ति देवकथा के आधार पर कंकाल मूर्ति का एक प्रारूप जो दक्षिण भारत से प्राप्त है। शिव को एक घुमक्कड़ अवधूत नवयुवक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसके एक पैर में घंटी बंदी है जो सामाजिक अधोगति का प्रतीक है। वे सामान्यतः एक हाथ में कपाल धारण किए हुए और कभी कभी कुलाले भरते हुए हिरण के साथ दर्शाए गए हैं। देवों में शिव का वर्चस्व दक्षिण भारत में प्राप्त एक पाद मूर्ति, एक पैर पर खड़ी प्रतिमा, वध की सीधी ओर से विष्णु, वक्ष की सीधी ओर से विष्णु निकलते हुए, वश के उल्टे ओर से ब्रह्मा निकलते हुए। शर्मेश मूर्ति दक्षिण भारत से प्राप्त मानव पशुता पक्षी का संयुक्त रूप। शिव ने विष्णु को नरसिंह रूप का वध किया, जब नरसिंह ने शिव को परम भक्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। शुद्ध सार सिद्धांत पर आधारित मूर्तियां सदाशिव मूर्ति, महासदाशिव मूर्ति, महेश मूर्ति। ये मूर्तियां अधिकतर दक्षिण भारत संबंधित हैं, पर इसकी रचना गुप्तोत्तर काल में हुई। सदाशिव मूर्ति महानिर्वाण तंत्र उत्तर कामगागम तथा गरुड़ पुराण में वर्णित। पांच मुख शिव के 5 स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं। ये पंच ब्रह्मा है, सदियों जात वामदेव अघोर तत्पुरुष तथा ईशान, जो क्रमशः शिव की पांच प्रमुख शक्तियां को प्रदर्शित करती हैं। पंच ब्रह्मा को सदाख्य अथवा साद तत्व भी कहा जाता है।